पृष्ठ संख्या 253, रशीद जहां, जिनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में मास्को में हुई, उर्दू की एक बड़ी लोकप्रिय लेखिका थी। वह जीवन की अस्पष्ट कामनाओं और मनोभावनाओं का उल्लेख बड़ी सफलता से करती थीं। समाज की बुराइयों पर उनकी चोट गहरी होती थी। उनका विचार था कि गंदगी को छिपाने के बदले उसे सबके सामने रख देना चाहिए, जिससे वह समाज की बिगड़ी हुई स्थिति को समझ लें और क्रांति के लिए तैयार हो जाएं। उनकी कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ एक प्रकार का व्यंग्य भी मिलता है, जो पढ़ने वालों को बहुत प्रभावित करता है। उन्हें मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन के चित्रण में बड़ी निपुणता प्राप्त थी। उन्होंने लिखा तो बहुत, परंतु उनका एक ही संग्रह औरत के नाम से प्रकाशित हुआ। कृष्णचंद्र इस युग के गल्प साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कलाकार हैं। उनका जन्म 1914 ईस्वी में पंजाब में हुआ, बालपन कश्मीर में बीता और ऊंची शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। कुछ समय तक वकालत करते रहे और उसी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के कुछ लेखों की रचना की। आरंभ में कुछ हास्य प्रधान कहानियाँ और लेख लिखे। 1935 ईस्वी के लगभग उनकी रोमानियत से भरी हुई कहानियाँ पसंद की जाने लगीं और वह अपना अधिक समय कहानी लिखने में बिताने लगे। जब उनकी कहानियों का पहला संग्रह तिलिस्मी ख्याल प्रकाशित हुआ, तो उसमें लोगों ने एक प्रकार की आश्चर्यजनक नवीनता और मनोरंजक सरलता पाई। सभी कहानियाँ रोमानी थीं, परंतु उनसे पता चलता था कि इनका लिखने वाला जीवन और मनोभावनाओं के विश्लेषण के संबंध में एक नया दृष्टिकोण लेकर आया है। थोड़े ही समय में उन्हें बड़ी महत्ता प्राप्त हो गई और विरला ही कोई पत्रिका ऐसी होगी जिसमें उनकी कहानियाँ ना छपी हों। कुछ समय के लिए उन्होंने रेडियो में नौकरी कर ली थी, फिर उससे अलग होकर अपना सारा समय साहित्यिक कामों में बिताने लगे। जीविका के लिए फिल्मी कहानियाँ भी लिखते हैं। कृष्णचंद्र ने पिछले 30 वर्षों में कम से कम 80 पुस्तकें लिखीं। उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं और अच्छे लेखों का संकलन किया है। फिल्म और रेडियो के लिए बहुत से नाटक भी लिख चुके हैं। इस स्थान पर केवल उनकी कहानियों का उल्लेख किया जाता है। उनकी कहानियों के उल्लेखनीय संग्रह हैं नज़ारे, जिंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, अन्नदाता, तीन गुंडे, समुंदर दूर हैं, अजंता से आगे, हम वहशी हैं, मैं इंतज़ार करूँगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, किताब का कफन और एक रुपया एक फूल। जो भी कृष्णचंद्र की कहानियों का अध्ययन करेगा, उसे शीघ्र ही मालूम हो जाएगा कि वह एक उच्च कोटि के कलाकार हैं, जो जीवन के ऊंच नीच, उसकी तरंगों और कल्पनाओं, आशाओं और सपनों, दुखों और वेदनाओं से भली भांति परिचित है। उनका एक सामाजिक दृष्टिकोण है जो उन्हें यह बताता है कि स्वतंत्रता, शांति और सुख भोग ही प्राणी के लिए आवश्यक है। आधुनिक सामाजिक स्थिति में वर्गों की विभिन्नता, जनता की आर्थिक दुर्दशा, शासन प्रबंधकों के अत्याचार, पृष्ठ संख्या 254 और पूंजीपतियों की लूट मार देखकर उनका कलम विष में डूब कर चलता है। ऐसे अवसरों पर अत्याचारियों पर व्यंग्य के तीर भी बरसाते हैं। जनता के प्रति उनका सच्चा प्रेम, मानव के भविष्य पर विश्वास और अत्याचार के विरुद्ध घृणा प्रकट करने की इच्छा उनकी कहानियों का विषय है। उनकी कला जीवन के परिवर्तित साधनों के संग चलती है। जनसाधारण के हितों की रक्षा और करुणाजनक जीवन से उनके लिए अमृत निकाल लेने की चेष्टा कृष्णचंद्र का प्रिय विषय है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन के हर मोड़ पर वह दीप लिए खड़े हैं और वह राह दिखाना चाहते हैं जो उन्नति और शांति की ओर जाती है। कृष्णचंद्र की भाषा बड़ी भावपूर्ण, रंगीन, मीठी और सजीव होती है। ऐसा लगता है कि अपने लेखों में जादू भर देते हैं और पाठक उनके साथ हो जाता है। कभी-कभी उनका उद्देश्य उनकी कला पर छा जाता है और उनके लक्ष्य का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं पड़ता, परंतु वह इतने बड़े कलाकार हैं कि ऐसे समय में भी अपनी बात बना ले जाते हैं। उनकी कला में कमी देखी जा सकती है, परंतु उनके विचार सदैव जनता के कल्याण के आदर्शों से ओतप्रोत होते हैं और यही उनकी लोकप्रियता के आधार बनते हैं। सआदत हसन मंटू 1912 से 1955 ईस्वी भी वर्तमान युग के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। पंजाब के रहने वाले थे और बालपन ही से लिखने लगे थे। उनकी कहानियाँ कला की दृष्टि से कभी कभी कृष्णचंद और दूसरे लेखकों की कहानियों से भी संपूर्ण होती हैं। मंटू ने जब लिखना प्रारंभ किया उस समय पंजाब क्रांतिकारियों का केंद्र बन रहा था। मंटू मार्क्स और गोर्की से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रूसी कहानियों के अनुवाद भी किए और कई वर्षों तक प्रगतिशील लेखकों के साथ साथ चलते रहे, परंतु उनकी व्यक्तिगत भावनाएं बहुत दिनों सबके साथ ना चल सकीं और उन्होंने अपना मार्ग अलग बनाने का यत्न शुरू कर दिया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने अपने विचारों को केवल कुछ विषयों में सीमित कर लिया था, इसलिए कभी-कभी यह विचार प्रकट किया जाता है कि वह जमीन की बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याओं से आंखें चुराते हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ अश्लील होने से बाल बाल बच जाती हैं और कभी कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि वह केवल लोगों को छेड़ने के लिए आग्रहपूर्वक इसी विषय पर लिखते थे। अश्लीलता का दोष लगाकर उन पर कई दफा मुकदमा चलाया गया। उनकी कला की विशेषता यह है कि उनकी कहानियों में बहुत से नाटकीय मोड़ आते हैं जो साधारण समस्याओं और परिस्थितियों को जीवित और प्रभावपूर्ण बना देते हैं। एक ही विषय पर इतने अनूठे ढंग से बहुत सी कहानियाँ लिख डालना मंटू का ही काम है। वासनाओं में डूबे हुए युवकों और युवतियों, वेश्याओं और समाज के गिरे हुए लोगों का चित्रण मंटू से बढ़कर अब तक उर्दू का कोई कलाकार नहीं कर सका है। उन्होंने बहुत लिखा है और जब तक जीवित रहे किसी समय भी उनके लिखने का वेग धीमा नहीं पड़ा। उनके पृष्ठ संख्या 255 कुछ संग्रहों के नाम यह हैं: धुआं, मंटू के अफसाने, लज्जते संग, नमरूद की खुदाई, खाली डिब्बे खाली बोतलें, ठंडा गोश्त, सियाह हाशिए, यजीद, चुगद, बादशाहत का खातिमा और सड़क के किनारे इत्यादि। मंटू ने बहुत से एकांकी नाटक और फिल्मी कहानियाँ भी लिखी हैं। राजेंद्र सिंह बेदी जन्म 1910 ईस्वी उर्दू के लेखकों में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनकी कहानियों के संग्रह दानव दाम, गरहन, कोख जली, लंबी लड़की और अपने दुख मुझे दे दो प्रकाशित हुए हैं। यह कम लिखते हैं पर उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट होता है। उनकी कहानियों का विषय भी जनजीवन की वही समस्याएं हैं जो सुखों और सपनों को भंग कर देती हैं और मनुष्य की आंतरिक दुर्दशा तथा उसके बाह्य जीवन को एक हास्यजनक स्थिति में पहुंचा देती हैं। उनकी कहानियाँ ऐसी सुंदर सजीव गठी हुई और प्रभावपूर्ण होती हैं कि उनका एक एक शब्द और एक एक वाक्य नपातुला जान पड़ता है। वह इस बात को नहीं भूलते कि एक छोटी सी कहानी में कोई विचार और कोई शब्द अनावश्यक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि वह भी उर्दू के माने हुए कथाकारों में गिने जाते हैं। बेदी ने नाटक भी लिखे हैं जिनका संग्रह सात खेल है और एक उपन्यास एक चादर मैली सी प्रकाशित होकर सम्मानित हो चुका है। वह बंबई में रहते हैं और फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखते हैं। इसमत शुगताई जन्म 1915 ईस्वी वर्तमान युग की सबसे लोकप्रिय लेखिका हैं। वह जोधपुर की रहने वाली हैं, अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त की और अब बंबई के फिल्मी जगत में एक लेखक के रूप में जीवन बिता रही हैं। अपनी पहली ही दो तीन कहानियों में उन्होंने पढ़ने वालों को चौंका दिया और सबने इसे मान लिया कि साहित्य क्षेत्र में एक नए कलाकार का आगमन है जिसके पास कहने को कुछ नई बातें और उन्हें रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। इसमत मध्यम वर्ग के मुसलमान परिवारों के आंतरिक जीवन की इतनी जानकारी रखती हैं कि उनकी कहानियाँ पढ़कर उस श्रेणी के परिवारों का नैतिक, आर्थिक और मानसिक जीवन आंखों के सामने आ जाता है। उनके कलम में जादू और उनकी शैली में विलक्षण शक्ति है। अपनी प्रारंभिक कहानियों में कभी कभी उन्होंने भी यौन संबंधी जीवन का चित्रण करते हुए अश्लीलता के सामने सर झुका दिया है, परंतु उनकी वास्तविकता उनकी अश्लीलता पर पर्दा डाल देती है। महिलाओं की बोलचाल, उनका रहन-सहन, उनकी इच्छाओं और कामनाओं का चित्रण इसमत से अच्छा कोई और नहीं कर सका है। उनकी निर्भीकता आश्चर्यजनक है, परंतु वह उससे समाज के नेताओं और ठेकेदारों को चोट पहुंचाने का काम लेती हैं। वह प्रथम श्रेणी की कलाकार हैं और जो भी उनकी कहानियाँ पढ़ेगा वह उनकी प्रगतिशीलता और मानव प्रेम को सराहे बिना ना रहेगा। उन्होंने नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं जिनका उल्लेख कहीं और होगा। पृष्ठ संख्या 256। उनकी कहानियों के संग्रह यह हैं: कलियाँ, चोटें, एक बात, छुई मुई और दो हाथ। उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी और उर्दू दोनों में सामान्य रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने प्रेमचंद से प्रेरणा लेकर कहानियाँ लिखना आरंभ किया था। उनकी कहानियाँ भी विशेषकर मध्यम वर्ग के सामाजिक जीवन पर निर्धारित होती हैं। मानव जाति की आर्थिक स्थिति में सुधार और समाज के नैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन उनके प्रिय विषय हैं। वह कवि और नाटककार भी थे। उन्होंने उपन्यास भी लिखे और महत्वपूर्ण लेख भी। कुछ आलोचक इस बात को मानते हैं कि कहानियों में उनको वह निपुणता नहीं मिलती जो नाटक में पाई जाती है। उनकी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें कोंपल, कफस, दाची, चट्टान और नासूर उल्लेखनीय हैं। अख्तर अंसारी भी उर्दू के एक बड़े साहित्यकार हैं, परंतु दुर्भाग्य से उनको जो यश प्राप्त होना चाहिए था वह न हो सका। कुछ लोगों ने उन्हें केवल कवि के रूप में देखा और कुछ ने आलोचक के रूप में, परंतु वास्तव में वह कवि और आलोचक से बढ़कर एक कलाकार हैं। अपनी कहानियों पर वह सच्चाई, सादगी और कलात्मक सुंदरता से बड़ी गहरी और विचारणीय समस्याएं प्रस्तुत कर जाते हैं। उनकी कहानियाँ जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर आधारित होती हैं। वह भी कला पर बहुत ध्यान देते हैं और एक समय में केवल एक घटना से एक ही प्रभाव पैदा करने की चेष्टा करते हैं। उनकी कहानियों के चार संग्रह प्रसिद्ध हैं: अंधी दुनिया, खूनी, यह जिंदगी और नाजी। अख्तर हुसैन रायपुरी, जन्म 1912, ने 1933 के लगभग थोड़ी ही सी कहानियाँ लिखकर बड़ा यश प्राप्त कर लिया। जब वह अलीगढ़ में पढ़ते थे उसी समय उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। वह संस्कृत, हिंदी, बंगला और फ्रांसीसी भी जानते हैं और इन भाषाओं से उन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुवाद भी किए हैं, विशेषकर शकुंतला नाटक और काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं का अनुवाद बड़ा महत्व रखते हैं। उन्होंने गोरकी की आत्मकथा का अनुवाद भी किया है जो प्रकाशित हो चुका है। कथाकार होने के अतिरिक्त वह एक अच्छे आलोचक भी हैं और प्रगतिशील आंदोलन के आरंभ में उनके लेखों से नवयुवकों को बड़ी प्रेरणा मिली, पर कुछ समय बीतने के बाद वह धीरे धीरे इस आंदोलन से दूर होते चले गए। अब पाकिस्तान में एक बड़े सरकारी नौकर हैं और लिखना बहुत कम कर दिया है। बंगला और हिंदी से प्रभावित होकर उन्होंने जो कहानियाँ लिखीं वो उर्दू के साहित्य क्षेत्र में बड़ी नवीन और सुंदर समझी गईं। उनकी कहानियों के दो संग्रह मोहब्बत और नफरत और जिंदगी का मेला प्रकाशित हो चुके हैं। उर्दू के एक और प्रसिद्ध कहानी लेखक हयात उल्लाह अंसारी, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, परंतु उनकी कहानियों के केवल दो संग्रह भरे बाजार में और शिकस्ता कंगूरे पृष्ठ संख्या 257 अब तक प्रकाशित हुए हैं। वह उर्दू के प्रसिद्ध दैनिक पत्र कौमी आवाज़ के संपादक हैं और बहुत सी राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग लेते हैं। हयात उल्लाह अंसारी गांधी जी के साथ कुछ दिन उनके आश्रम में भी रह चुके हैं और गांधीवाद के बहुत बड़े उपासकों में गिने जाते हैं। इसका प्रभाव उनके लेखों पर भी देखा जा सकता है। कम लिखने पर भी उनको उर्दू के कथाकारों में एक विशेष स्थान दिया जाता है। मनोभावों के विश्लेषण और उनको जीवन की प्रत्यक्ष परिस्थितियों से संबंधित करने में वह निपुण हैं, इसीलिए लगभग उनकी प्रत्येक कहानी कला का एक अच्छा नमूना समझी जाती है। उनकी विचारधारा तर्कपूर्ण होती है और कहीं यह अनुमान नहीं होता कि वह कहानी में कृत्रिमता पैदा कर रहे हैं। जीवन के वास्तविक और सुंदर चित्रण वह इस प्रकार करते हैं कि उनकी कहानियों में जान पड़ जाती है। उनकी भाषा सरल, शुद्ध और सरस होती है। पंजाब के ग्रामीण जीवन का सबसे सुंदर चित्रण करने वाले अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह हैं। कासमी ने अपनी कविताओं की भांति आरंभ में कहानियाँ भी रोमानी ढंग की लिखीं, जिनमें प्रेम के जीते जागते चित्र गीतों की मधुर भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। परंतु कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने प्रगतिशील सामाजिक विषयों को अपनाया और बड़ी महत्वपूर्ण कहानियों की रचना की। इन कहानियों में विभिन्न वर्ग के लोगों और समाज के पीड़ित जनजीवों की करुणाजनक आत्मा जाग उठती है। उनकी भाषा बड़ी सुंदर और रोचक है। कहानी कहने का ढंग ऐसा है जिसमें सरलता और भावुकता मिली जुली है। उनके बहुत से संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चौपाल, बगुले, आबले, सन्नाटा, आंचल, दरो दीवार और बाजारे हयात प्रसिद्ध है। बलवंत सिंह में भी एक अच्छे कथाकार के बहुत से गुण एकत्र हो गए हैं। बलवंत सिंह की सामाजिक चेतना प्रगतिशील है, परंतु उनके प्रस्तुत करने में कहीं कहीं कमी रह जाती है। फिर भी उनकी बहुत सी कहानियाँ कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर हैं। उनके संग्रहों में से यज्ञा, तारों पूद, सुनहरा देश और पहला पत्थर प्रसिद्ध हैं। अख्तर ओरी नवी, जन्म 1910 ईस्वी, बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और आलोचनाएं भी, उपन्यास और नाटक भी। पर उन्हें कहानियां लिखकर जो यश प्राप्त हुआ वह आलोचना के अतिरिक्त किसी और साहित्य क्षेत्र में नहीं हो सका। उनके भी कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे मंजरो पस मंजर, भूल भुलैया और अनारकली, कलियां और कांटे, केचलियां और वाले जिब्रील और एक मामूली सी लड़की। उनकी कहानियों में सामाजिक चेतना मनोभावनाओं के रास्ते से प्रस्तुत होती है, इसीलिए वह उन लेखकों में गिने जाते हैं जो जीवन के चित्रण में मानव विज्ञान से काम लेते हैं। उनके विपरीत बिहार ही के एक और कथाकार सुहैल अजीमाबादी हैं, जो सामाजिक विषयों पर लिखते हुए उस परंपरा का पालन करते हैं जो प्रेमचंद ने पृष्ठ संख्या 258 चलाई थी। बिहार के ग्रामीण जीवन के सुंदर चित्र उनकी कहानियों में देखे जा सकते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं, कथा साहित्य के संसार में भी एक ऊंचा स्थान रखते हैं। उनकी कहानियाँ जीवन की साधारण घटनाओं और समस्याओं से जन्म लेती हैं, कहीं उनमें राजनीति और सामाजिक चेतना का अनुभव होता है और कहीं बड़े सरल ढंग से एक प्रेम कहानी कह दी जाती है। प्रगतिशील लेखकों में उनको भी बड़ा महत्व प्राप्त है। उनके संग्रहों में एक लड़की, जफरान के फूल, मैं कौन हूँ और कहते हैं जिसको इश्क बड़े लोकप्रिय हैं। मुमताज मुफ्ती और मोहम्मद हसन अस्करी ने भी अवचेतन से प्रेरित मनोभावनाओं का विश्लेषण करते हुए कहानियाँ लिखी हैं और अधिकतर अज्ञात और छिपी हुई भावनाओं और वासनाओं का चित्रण किया है। कभी-कभी इन कहानियों में सामाजिक चेतना का अंश भी मिल जाता है, वरन अधिकतर इनमें व्यक्ति जीवन की साधारण धारा से अलग केवल रोगियों और बीमारियों के अनुभवों का पता चलता है। मुमताज मुफ्ती के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें अनकही, चुप और गहमागहमी प्रसिद्ध हैं। हसन अस्करी के दो संग्रह जंजीरे और कयामत अमेरिका आए ना आए प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कई अंग्रेजी और फ्रांसीसी उपन्यासों के अनुवाद भी किए हैं। वह एक अच्छे आलोचक हैं और उनकी गद्य शैली बड़ी सुंदर और सजीव है। विचारधारा की दृष्टि से वह फ्रांस के पतनशील लेखकों से बहुत प्रभावित हैं और प्रगतिशील विचारों के अत्यंत कट विरोधी माने जाते हैं। कुछ समय से पाकिस्तानी और इस्लामी साहित्य के प्रचारक हो गए हैं और गंभीर स्तर पर धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों पर विचार व्यक्त करते हैं। अजीज अहमद ने भी उपन्यासों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं जिनमें अधिकतर वासना और यौन जीवन की कामनाएं अश्लीलता से बचते हुए प्रकट की गई हैं। उनकी कहानियों में एक प्रकार की मानसिक विचारधारा भी देख पड़ती है। उनके दो संग्रह रक्से नातमाम और बेकार दिन बेकार रातें प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने भी कई उपन्यास लिखे हैं और कई पुस्तकें आलोचना के संबंध में लिखी हैं। वह पाकिस्तान में हैं और अब बहुत कम लिखते हैं। हंसराज रहापर उर्दू और हिंदी दोनों में लिखते हैं। वह मार्क्सवाद और यथार्थवाद के उपासक हैं और बड़ी सादगी से साधारण जीवन का चित्रण करते हैं। उनकी कहानियों के दो संग्रह प्रसिद्ध हैं, नया उफुक और हम लोग। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और आलोचनात्मक निबंध भी। प्रेमचंद पर भी उनकी एक रचना उल्लेखनीय है। इन लेखकों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे हैं जिनका उल्लेख कथा साहित्य के संबंध में करना आवश्यक है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुछ साल पहले बड़ा यश प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अब नए लेखकों ने उनका स्थान ले लिया है। उनमें से कुछ के नाम ये हैं। पृष्ठ संख्या 269, एम असलम, ला अहमद, जलील किदवई, मजनू गोरखपुरी, हामिदुल्ला अफसर, हिजाब इस्माइल इत्यादि। इनमें से हर एक के कई कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्थान की कमी के कारण इसी समय के कुछ और लेखकों के संबंध में भी कुछ लिखना असंभव है जो बड़े लोकप्रिय हैं और जिनकी कहानियाँ बड़े उत्साह से पढ़ी जाती हैं, जैसे गुलाम अब्बास रचना आनंदी, जाड़ों की चांदनी, महेंद्रनाथ रचना चांदी के तार, जहाँ मैं रहता हूँ, माई डार्लिंग होटल, नई बीमारी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक, हजारा मसरूर रचना चरके हाय अल्लाह, खदीजा मस्तूर रचना खेल बौछार, चंद रोज और मुमताज सीरी रचना अपनी नगरिया, कुदरतुल्लाह शहाब रचना नफसाने अनवर, आग की आगोश में प्रेमनाथ परदेसी, दुनिया हमारी इब्राहिम जलीस, जर्द चेहरे चिरागों सा सफ़र, 40 करोड़ भिखारी, तिकोना देश इत्यादि, ए हमीद, खिजां का गीत, सिद्दीकी बेगम, हिचकियां लरजते आंसू, रक्से बिलिस्म, शौकत सिद्दीकी, तीसरा आदमी, इंतजार हुसैन, गली कूचे कंकरी, प्रकाश पंडित, मीरास रजिया, सज्जाद जहीर ने भी बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, किंतु उनकी कहानियों का कोई संकलन प्रकाशित नहीं हो सका है। मिर्जा अदीब, सहरा नवर्द के खतूत, जंगल, सालेहा आबिद हुसैन, निराश में आस, नौ नगे, प्रेमनाथ दर, कागज का वसुदेव, नीली आँखें, मसीहुल हसन, चौथी बहन, अशफाक अहमद, गुदड़िया, कौश चांदपुरी, शोले संग इत्यादि। कथाकारों की इस पीढ़ी के पश्चात जो नए लेखक आए उनका उल्लेख आगामी अध्याय में किया जाएगा, किंतु यह भी याद रखना चाहिए कि ऊपर जिन लेखकों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं उनमें से कई आज के बहुत अच्छे कथाकारों में गिने जाते हैं। वह भारतवर्ष और पाकिस्तान के जीवन वर्गों के संघर्ष, मनुष्य की आंतरिक भावनाओं और देश की दुर्दशा से भली भांति परिचित हैं और इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो बड़ी सुंदरता से उन सपनों और कल्पनाओं का चित्र खींचते हैं जो संघर्ष करते हुए देशों को मनुष्य के प्रति पूरा करना चाहिए। उर्दू में उपन्यास साहित्य के आरंभ का उल्लेख हो चुका है, पर आधुनिक जीवन की सभी समस्याओं को लेकर और जन साधारण को उपन्यास का नायक बनाकर जिसने पहले पहल उपन्यास रचना की वह प्रेमचंद ही थे। प्रेमचंद के आरंभ के उपन्यासों में वह निपुणता और कलात्मक संपूर्णता नहीं मिलती जो उनकी कहानियों में पाई जाती है, परंतु उनके अंतिम जीवन में लिखे हुए उपन्यासों में केवल गहरे अनुभव ही का चित्रण नहीं मिलता बल्कि कला के दृश्य से भी उनमें सुंदरता पाई जाती है। आरंभ के उपन्यासों में प्लाट में जो ढीलापन पाया जाता था वह बाद में दूर हो गया। विशेषकर अपने अंतिम उपन्यास गोदान में उन्होंने कला और विषय दोनों का समन्वय इस प्रकार किया है कि उन्हें सदैव बड़े कलाकारों में गिना जाएगा। पृष्ठ संख्या 260। वैसे तो प्रेमचंद ने लगभग एक दर्जन उपन्यास लिखे और 17-18 वर्ष की आयु ही में लिखना आरंभ कर दिया था, परंतु बाजारे हुस्न लिखने पर ही उन्हें यश प्राप्त हुआ। यह उपन्यास सेवा सदन के नाम से हिंदी में छपा। इसके अतिरिक्त उनके प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यासों में बेवा, शोगाने हस्ती, रंगभूमि, मैदाने अमल, कर्मभूमि और गोदान है। प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में भी विचारधारा की दृष्टि से वही बातें कही जा सकती हैं जो उनकी कहानियों के बारे में कही गई हैं। यहाँ भी वही जनता के सबसे बड़े उपन्यासकार देख पड़ते हैं। मिर्जा रुसवा और प्रेमचंद के अतिरिक्त उर्दू के कई लेखकों ने वेश्याओं के करुणाजनक जीवन का चित्रण बड़े हृदय विदारक ढंग से किया है। कारी सरफराज हुसैन के कई उपन्यासों और सज्जाद हुसैन कसमंडवी का नश्तर इसके उदाहरण हैं। लेकिन नवीन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चेतना को सामने रखकर जिसने इस समस्या को छेड़ा है वह काजी अब्दुल गफ्फार, मृत्यु 1956 है, जिन्होंने अपने अनुपम उपन्यास लैला के खतूत में एक वेश्या की करुण कहानी बड़े रोचक ढंग से कही है। उनकी कृतियों में समस्याओं का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है कि इसको दार्शनिक प्रभाव प्राप्त हो गया है। इस पुस्तक में भावुकता और गंभीरता का ऐसा सामंजस्य है कि पढ़ने वाला आनंद भी प्राप्त करता है और प्रश्न की गंभीरता से चिंतित भी हो उठता है। उनकी भाषा सुंदर और भावपूर्ण है। काजी अब्दुल गफ्फार एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार भी थे और लेखक भी। उनकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से हयाते अजमल, आसारे अबुल कलाम, आसारे जमालुद्दीन अफगानी अजीब प्रसिद्ध हैं। नए ढंग का पहला उपन्यास लंदन की एक रात, सज्जाद जहीर, जन्म 1905 ईस्वी, ने 1939 ईस्वी में लिखा। सज्जाद जहीर ने कई वर्ष लंदन और पेरिस में बिताए थे और वहाँ के साहित्यिक प्रयोगों से प्रभावित हुए थे। इस उपन्यास में उन्होंने यूरोप की कई साहित्यिक शैलियों का प्रयोग किया है, परंतु इसका महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इसकी रचना में यूरोप से प्रेरणा मिली है, बल्कि यह वह पहला उपन्यास था जिसमें भारत के युवकों की कल्पनाओं और कामनाओं को यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा गया है। भारतवर्ष के कुछ विद्यार्थी जो लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं और मध्य वर्ग के संपन्न परिवारों से संबंध रखते हैं, संसार के बदलते हुए जीवन से प्रोत्साहित होकर भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं। उपन्यास के अधिकतर पात्र स्वप्नलोक के रहने वाले और आदर्शवादी प्रतीत होते हैं और यौन जीवन के दुराचार में फंसे हुए हैं, परंतु अपनी मातृभूमि की स्थिति से चिंतित होकर जब उनका स्वप्न टूटता है तो अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना उनमें जाग उठती है। नई उपन्यास कला में यह एक सफल प्रयोग था जिससे कई नए लिखने वाले प्रभावित हुए। सज्जाद जहीर जौनपुर के एक ऊंचे सुरक्षित घराने से संबंध रखते हैं। पृष्ठ संख्या 261। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की, फिर लंदन चले गए। बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके लंदन में ही मुल्क राज आनंद और अन्य लेखकों के साथ मिलकर भारतीय प्रगतिशील लेखकों की संस्था स्थापित की और भारतवर्ष लौटकर यहाँ के राष्ट्रीय और क्रांतिकारी आंदोलनों में सम्मानित हुए। उर्दू तथा हिंदी के प्रगतिशील लेखकों के संगठन में उनका बड़ा योग है। कथा साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। कुछ समय से कविताएं भी लिखने लगे हैं। उनकी उल्लेखनीय पुस्तक रोशनाई है, जिसमें भारतवर्ष में प्रगतिशील आंदोलन का इतिहास प्रस्तुत किया है। कृष्णचंद्र, जिनका उल्लेख कहानी के लेखकों के साथ हो चुका है, एक अच्छे उपन्यासकार भी हैं। उनके बहुत से उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें शिकस्त, जब खेत जागे, आसमान रोशन हो, 52 पत्ते, एक औरत, हजार दीवाने, मेरी यादों के चुनार, एक वायलन समंदर के किनारे, चांदी के घाव, एक गधा नेफा में और तथा कागज़ की नाव उल्लेखनीय हैं। जब उनका पहला उपन्यास शिकस्त छपा तो आलोचकों ने उनके मूल्य में बड़े मतभेद प्रकट किए, परंतु सच यह है कि कश्मीर के जीवन और वहाँ के कृषक जागरण का इससे सजीव चैतन्य और सहानुभूतिपूर्ण उल्लेख और कहीं नहीं मिलता। कला की दृष्टि से इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं, परंतु इसे पढ़कर एक जीता जागता कश्मीर हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है। कृष्णचंद्र के विषयों और अनुभूतियों का क्षेत्र इतना व्यापक है और मानव प्रेम से उबलती हुई चेतना प्रत्येक प्रयोग को प्रगतिशीलता के ढांचे में ढाल लेती है। कभी साधारण वर्णन से, कभी व्यंग्य से और कभी गंभीर विचारों से पढ़ने वाला मोहित हो उठता है। उनकी गद्य शैली में असाधारण सौंदर्य, चमत्कार और ताजगी है। प्रसिद्ध कथाकार इस्मत चुगताई ने भी कई उपन्यास लिखे हैं जिनके नाम हैं जिद्दी, टेढ़ी लकीर, मासूमा और सौदाई। जिद्दी की पृष्ठभूमि सामाजिक होने पर भी रोमानी जान पड़ती है। उसकी वास्तविकता में आदर्शवाद की एक ऐसी स्पष्ट झलक है कि उसका प्रभाव बहुत हल्का हो जाता है। टेढ़ी लकीर अवश्य एक महत्वपूर्ण रचना है। बालपन के मनोभावनाओं और आंतरिक उलझनों का इतना सुंदर चित्रण किसी और उपन्यास में देखने में नहीं आता। मध्यवर्ग के एक मुसलमान परिवार का जीवन इसमें बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। यह अवश्य है कि इसका अंतिम भाग इसके आरंभिक भाग से कुछ अच्छी तरह जुड़ा हुआ नहीं जान पड़ता, क्योंकि राजनीतिक समस्याओं को जिस प्रकार इसमें लाया गया है वह वास्तविक होते हुए भी उस स्थान पर अनुचित जान पड़ती है। इस्मत को भाषा पर असाधारण अधिकार प्राप्त है और वह पात्रों की बातचीत ऐसे स्वाभाविक ढंग से लिखती हैं कि यथार्थता का अनुभव बढ़ जाता है। अजीज अहमद वर्तमान युग के लोकप्रिय उपन्यासकारों में हैं। इस समय तक उनके कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें गुरेज, ऐसी वलंदी ऐसी पस्ती, पृष्ठ संख्या 262, शबनम प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियों की भांति उनके उपन्यास भी कामदेव की आँख मिचौली से भरे हुए हैं। उनके लगभग सभी पात्र वासनाओं में मस्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उपन्यास कला की दृष्टि से वह बड़े निपुण हैं। कई भाषाएं जानने के कारण वह यूरोप की अच्छी शैलियों से प्रभावित हुए हैं, परंतु उनकी सबसे बड़ी भूल यह है कि वह यौन जीवन का विश्लेषण करते हुए जीवन की दूसरी बड़ी बड़ी समस्याओं से आंखें बंद कर लेते हैं।